भारत और फिलीपींस ने नई रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। भारत दौरे पर आए फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत के बाद इस पर सहमति बनी। मंगलवार को नई दिल्ली में हुई बातचीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
हर स्तर पर संवाद, हर क्षेत्र में सहयोग लंबे समय से हमारे संबंधों की पहचान रहा है। आज मैंने और राष्ट्रपति जी ने आपसी सहयोग, क्षेत्रीय मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर विस्तार से बातचीत की। ये प्रसन्नता का विषय है कि आज हमने अपने संबंधों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। इस पार्टनरशिप के पोटेंशियल को परिणामों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक एक्शन प्लान भी बनाया गया है।
दोनों देशों ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, विज्ञान, अंतरिक्ष सहयोग के अलावा आर्थिक सहयोग को बढ़ाने पर सहमति जताई है। दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापार पर प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं,
हमारा बायलेटरल ट्रेड निरंतर बढ़ रहा है और $3 बिलियन का आंकड़ा पार कर चुका है। इसे और मजबूत करने के लिए इंडिया आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के रिव्यू को जल्द से जल्द पूरा करना हमारी प्राथमिकता है। साथ ही हमने द्विपक्षीय प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में काम करने का फैसला भी किया है।
चार दिनों की यात्रा पर आए राष्ट्रपति मार्कोस ने मंगलवार को ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मुलाकात भी की। दक्षिण चीन सागर में शांति और स्थिरता की भारत ने फिर से वकालत की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को दोहराया कि इस बारे में भारत का रुख स्पष्ट और स्थिर है। इस क्षेत्र में भारत फिलीपींस संयुक्त नौसैनिक अभ्यास पर चीनी प्रतिक्रिया को लेकर पूछे गए सवाल पर विदेश मंत्रालय में सचिव पी कुमारन कहते हैं,
वी कंसीडर द साउथ चाइना सी एज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल कॉमन्स एंड वी सपोर्ट फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ओवर फ्लाइट इन द रीजन एंड लेजिटिमेट कॉमर्स थ्रू द वाटर्स ऑफ द साउथ चाइना सी। इंडिया हैज एन अबाइडिंग इंटरेस्ट इन पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन एंड our position is based on the UN convention of the law of the seas unclos 1982. India also believes that any difference between the parties concerned should be resolved peacefully by respecting the legal and diplomatic processes and without resorting to the threat or use of force.
aur ab charcha gharelu rajniti ki kai manhani mukadmon ka samna kar rahe congress neta aur lok sabha mein neta pratipaksh राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी इन दिनों सुर्खियों में है। चीन द्वारा भारत की जमीन हथियाने का आरोप लगाने पर सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने राहुल गांधी की भारतीयता को लेकर टिप्पणी कर दी। जस्टिस दीपांकर गुप्ता ने मानहानि के एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान कहा कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो यह सब नहीं कहते। कांग्रेस और विपक्षी दलों ने इस पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने अपने भाई राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा,
कौन सच्चा भारतीय है, कौन सच्चा भारतीय नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि मतलब न्यायपालिका के प्रति पूरे आदर के साथ कह रही हूँ कि ये तो उनके दायरे में नहीं होती था डिसीजन, ये कोई जस्टिस तो नहीं तय करेंगे। दूसरा, राहुल जी ने हमेशा आर्मी का, सेना का आदर किया है।
वहीं यह मुद्दा विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ब्लॉक की मंगलवार को ही बैठक में भी उठा। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई इस बारे में बताते हैं,
सभी राजनीतिक दलों का ये मानना है कि देश के मुद्दों को उठाना हमारा कर्तव्य है। विपक्ष का कर्तव्य है कि जनहित के मुद्दों को उठाना सदन के अंदर, सदन के बाहर। तो कहीं हमारे दलों के नेताओं को लगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज का जो बयान आदरणीय राहुल गांधी जी पर था वो बहुत ही आश्चर्यजनक था।
राहुल गांधी को लगातार घेरने वाली भाजपा ने अदालत की टिप्पणी का स्वागत किया है। राहुल गांधी को सुधरने की नसीहत भी दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस कहते हैं,
लगातार जिस भाषा में पाकिस्तान या चीन बोलता है उसी भाषा में राहुल गांधी बोलते हैं, ये बहुत गलत बात है। देश के हित के विरोध में है, एक बहुत बड़ी पार्टी के वो नेता है, इसके कारण दुनिया में भी हमारे देश की बदनामी होती है। तो मुझे लगता है कि अब जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिप्रिमांड किया है तो शायद वो आगे से अपना रवैया बदलेंगे।
देश के कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में जनजीवन पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। मंगलवार को उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा ने भारी तबाही मचाई है। भारी बारिश के बाद बादल फटने के चलते उत्तरकाशी का धाराली गांव पूरी तरह बर्बाद हो गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 50 से ज़्यादा लोग अब भी लापता हैं। यहां बचाव एवं राहत कार्यों में सेना की मदद ली जा रही है। इस तबाही की जद में सेना का एक कैंप भी आ गया। 9 जवानों के लापता होने की खबर है। यहां बने हेलीपैड को भी नुकसान पहुंचा है। इस प्राकृतिक आपदा से राज्य को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। सभी तक मदद पहुंचाने की बात कहते हुए राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया,
ऐसे सभी व्यवस्थाएं तत्काल पहुंचे। एक एक व्यक्ति की जान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक को बचाने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आपदा तो प्राकृतिक है, लेकिन उसका क्विक रिस्पांस टाइम कम से कम हो, वही हमारा एक मंत्र भी है। उसी मंत्र के आधार पर काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें आश्वस्त किया है कि हर तरीके से केंद्र सरकार की मदद होगी। आदरणीय गृह मंत्री जी ने आश्वस्त किया है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। हमारा प्रयास है कि कल सभी प्रकार की जो है सेवाएं वहां पर सुचारू रूप से हों।
इस बीच उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश के आसार हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। प्रयागराज और वाराणसी में गंगा नदी का पानी लोगों की घरों तक पहुँचने लगा है। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्वरत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।